ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा ने परम शिक्षक के रूप में हमको चार विषय पढ़ाए हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन चारों विषयों में हमारी कितनी परसेंटेज है, किस विषय में ज्यादा है, किस में कम है, और अगर कम है तो उसको हम कैसे बढ़ाएं, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। मुझे याद है बाबा की एक मुरली है 14 जनवरी 1980 की, उसमें बाप और दादा दोनों रूह रिहान कर रही हैं, तो शिव बाबा कहते हैं कि ये सब बच्चे मेरी रुद्रमाला हैं, और ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि ये सब बच्चे मेरे राइट हैंड है। तो शिव बाबा पूछते हैं कि क्या सबके सब राइट हैंड है, क्योंकि राइट हैंड का मतलब होता है सरल, सच्चा, स्पष्ट। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि आपके पास सबका पोता मेल है, पोता मेल देख लीजिए। तो जब पोता मेल देखने की बात आई तो सारे बच्चों का, चारों सब्जेक्ट का जो पोता मेल है वो एक घड़ी की तरह इमर्ज हुआ। जैसे सृष्टि चक्र का चित्र है, उसके चार भाग है, तो चारों सब्जेक्ट चार भाग में, और हर एक भाग में एक कांटा लगा था जो परसेंटेज बता रहा था। तो उसमें क्या देखा कि दो सब्जेक्ट में तो बच्चे 75% से ऊपर है, और जो बाकी के दो सब्जेक्ट हैं उनके लिए बाबा ने कहा कि समय की गति तो तेज है, लेकिन बच्चों की अगर पुरुषार्थ की गति तेज नहीं हुई तो बच्चों को एवर रेडी कैसे कहेंगे। बाबा ने कहा विज्ञान तो इस स्थिति तक पहुंच गया कि बटन दबाओ और सब कुछ हाजिर, बटन दबाया और विनाश। तो बाबा ने कहा क्या बच्चे इस स्टेज तक पहुंचे हैं। तो बाबा ने तीन बातें कही चेकिंग के लिए। पहली बात बाबा ने कहा कि क्या संकल्प करते ही बच्चे अशरीरी हो जाते हैं। दूसरी बात बाबा ने कही कि क्या संकल्प करते ही मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ इस स्थिति में टिक जाते हैं। और तीसरा बाबा ने कहा देह के संबंध, देह की दुनिया के आकर्षण, प्रकृति की हलचल के आकर्षण, इन सब से पार जाकर के फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकती। तो बाबा ने कहा जिन दो सब्जेक्ट में नंबर कम है वो कौन कौन से है? एक योग और दूसरा धारणा। ज्ञान में और सेवा में नंबर 75% से ऊपर है, लेकिन योग और धारणा इन दोनों में नंबर बढ़ाने की जरूरत है। और उसके लिए बाबा ने कहा कि जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि बैलेंस रखो, तो बाबा ने कहा कि घर परिवार में रहने वाले अगर बैलेंस रख करके चलें तो इन दोनों सब्जेक्ट में नंबर आगे हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा बैलेंस किस किस का, लौकिक का और अलौकिक का, परमार्थ का और व्यवहार का, शरीर का और आत्मा का। अर्थात जितना समय हम शरीर निर्वाह में देते हैं उतना ही हम आत्म निर्वाह हमें भी दें। तो बाबा ने कहा बच्चे दोनों चीजों को लेके तो चलते हैं, लेकिन देखने की बात समय और शक्ति दोनों में संतुलित रूप में लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लौकिक की तरफ समय और शक्ति ज्यादा लग जाती है। बाबा ने कहा जैसे कांटा होता है, कांटे के दो पलड़े होते हैं, कांटा बीच में होता है तो दोनों चीज बराबर होती है, और अगर कांटा एक तरफ झुकता है तो चीज भी उस तरफ झुक जाती है। तो बाबा ने कहा श्रीमत है कांटा, अगर श्रीमत का कांटा बीच में है तो दोनों पलड़े बराबर रहेंगे, इतना ही टाइम हम लौकिक को देंगे, इतना ही अलौकिक को देंगे, इतना ही हम शरीर निर्वाह को देंगे, इतना ही हम आत्म निर्वाह को देंगे, इतना ही हम संसारिक कार्यों को देंगे और इतना ही हम परमार्थ को भी देंगे। लेकिन बाबा ने कहा होता क्या है कि लौकिक कार्यों की तरफ पलड़ा झुक जाता है, और जब पलड़ा झुक जाता है तो बच्चे लौकिक कार्य के लिए कहते हैं करना ही है, तो वहां तो ये शब्द आ जाता है करना ही है, और जब अलौकिक की बात आती है तो कहते हैं करना तो है। तो बाबा ने कहा ही और तो, ये दो शब्दों का अंतर आ जाता है, क्योंकि जहां करना ही है ये भाव है तो ये दृढ़ता है, कुछ भी हो जाए हमको करना ही है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, नहीं तो हमारी समाज में इज्जत क्या बचेगी, ये काम तो हमको करना ही है, चाहे हमें कैसे भी करना पड़े, दिन रात जाग के करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो वहां तो इतनी दृढ़ता होती है। और जब ईश्वरीय कार्य की बात आती है तो कहते हैं करना तो है, हमने कोई मना थोड़ी किया है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे, पर उसमें ना कोई समय की सीमा होती है, ना कोई दृढ़ता होती है, ना भी नहीं होती, लेकिन कार्य करने के लिए कोई निश्चित अवधि भी नहीं होती है। तो बाबा ने कहा अगर इसका परिवर्तन हो जाए, अर्थात अलौकिक कार्य में भी इतनी दृढ़ता आ जाए कि कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है, तो ये चारों सब्जेक्ट का बैलेंस मेंटेन हो सकता है। अर्थात योग और धारणा में जो परसेंटेज की कमी है वो कवर हो सकती है, लेकिन बाबा ने कहा कि ये परसेंटेज कवर करने के लिए दो बातें बीच में बाधक बनती है। जो पलड़ा लौकिक की तरफ झुक जाता है वो जमीन में लग जाता है तो जमीन का आकर्षण आ जाता है, प्रकृति का आकर्षण आ जाता है, सांसारिक चीजों का आकर्षण आ जाता है, और दूसरा जब वो पलड़ा झुक जाता है तो वो बोझ वाला हो जाता है, तो बच्चों के सिर पे बोझ भी आ जाता है, ईश्वरीय कार्य को करने में बोझिल महसूस करते हैं। तो उसमें दो बातें खास बाधक बनती हैं। एक बात बाबा ने बताई लोकलाज, और दूसरी बात बाबा ने बताई कर्म बंधन। लोक लाज किस प्रकार से दोनों सब्जेक्ट को गैलप करने में बाधक बनती है, और कर्म बंधन कैसे बाधक बनते हैं, इसकी अब हम चर्चा करेंगे। जैसे बाबा ने पहले लोक लाज की बात की तो हम देखते हैं कि कई लोगों को सुबह जल्दी उठने में भी लोक लाज आती है, घर के लोग क्या कहेंगे, ये कोई उठने का समय है, ये तो अंधेरे में ही उठ के बैठ गया, इसको नींद नहीं आती क्या, अरे 3:30 कोई उठने का टाइम होता है, तो व्यक्ति घर के लोग कुछ ना बोले, कोई चर्चा ना हो जाए, किसी मित्र संबंधी तक समाचार ना पहुंच जाए, तो दुबके पड़े रहते उठते नहीं, तो लोक लाज के कारण उनका अमृत वेला ठीक से नहीं होता। उसके बाद कई लोगों को सुबह सुबह क्लास में आने में भी लोक लाज आती, अरे सुबह सुबह लोग कहेंगे घर के काम छोड़ के कहाँ चल पड़े, अरे सत्संग कोई सुबह सुबह थोड़े करना होता है, वो तो शाम को भी तो हो सकता है, कोई जरूरी थोड़े सुबह ही जाया जाए, तो बेशक उनके पास समय है और वो सक्षम है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इसके कारण वो क्लास मिस करती है। फिर तीसरी लो क्लास किस में आती है? खान पान में लो क्लास आती। लोग कहेंगे तुम शुद्ध भोजन खाते हो, ये कैसे निभेगा? अरे बाहर जाना पड़ता है, नौकरी धंधा व्यवसाय शादी ब्याह, तो ऐसे कैसे चलेगा? कुछ खाओगे नहीं तो। अरे बाहर त्योहार नहीं खाते वो अलग बात है, लेकिन रोज रोज तो नहीं निभ सकता। तो लोग क्या कहेंगे, ये प्याज नहीं खाता, लहसुन नहीं खाता, किसी के घर में नहीं खाता, तो क्या कहेंगे? इस भय से कई लोग भोजन की धारणा पे दृढ़ नहीं रह पाते। तो विचार करना चाहिए कि अगर हम शुद्ध भोजन खाते हैं तो हमें लो क्लास आती है, और दुनिया में लोग इतनी गंदी गंदी चीज खाते हैं उनको लो क्लास नहीं आती है, तब लो क्लास कहाँ चली जाती है उनकी? और लोग सुबह जल्दी उठ करके कोई नेट खोल के बैठता है, कोई टीवी खोल के बैठता है, उनको तो लो क्लास आती नहीं। और अगर हम भगवान को याद करते हैं तो हमें शर्म आती है, हम वापस दुबक जाते हैं बिस्तर में। और कई लोग सुबह सुबह उठ के क्या क्या गलत खाते पीते हैं, क्या क्या करते हैं, उनको शर्म नहीं आती और हमको सत्संग में जाते शर्म आती। तो अपने आप से एकांत में बैठ के बात करनी चाहिए। बाबा ने कहा जो लोक जाने वाला है उस लोक की चिंता करते, उस लोक की लाज निभाना चाहते जो नष्ट हुआ पड़ा है, और जो लोक आने वाला है जिसकी स्थापना भगवान कर रहा है उस लोक की कोई चिंता ही नहीं। अरे ये कलियुगी दुनिया, विकारी दुनिया, जिसके लिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही नहीं बचा, पशु बन गया, तो ऐसे लोगों की हम चिंता करते हैं कि वो क्या कहेंगे। और स्वयं भगवान अपना लोक छोड़ के हमें पढ़ाने आया, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। जिससे हमारा 21 जन्मों का भाग्य बन रहा है उसके प्रति हम बेपरवाह हैं। और कुछ लोगों की वाहवाही सुनने के लिए, और वो भी वाहवाही क्या करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो कोई भी मदद करने आने वाला नहीं है, तब तो भगवान को ही कहेंगे कि हमारी मदद करो। तो ऐसे लोग जो स्वार्थी हैं, जिनकी बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज है, जिनके पास राइट रॉन्ग की बुद्धि नहीं है, जो अपना जीवन नहीं संवार पाते, उन लोगों को देख करके हम अपनी भी चाल बिगाड़ लें क्या? तो बाबा ने कहा इस जाने वाली दुनिया की चिंता मत करो, आने वाली दुनिया का ख्याल करो। संसार में जिस किसी ने भी कोई महान कार्य किया वो लोकलाज छोड़ के ही कर सका। जिसने लोकलाज की चिंता की वो कभी महान कार्य कर ही नहीं पाया। महात्मा गांधी ने जब आजादी का संघर्ष किया तो बड़े बड़े घरों की महिलाएं लोकलाज छोड़कर के सत्याग्रह में शामिल हुई। बहनों ने अपना जेवर उतार दिया, घूंघट उतार दिया, और बापू के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। तब बापू गांधी ने कहा अगर महिलाएं आगे ना आती तो मैं भारत को वर्षों तक भी आजाद ना करा पाता। तो किसी भी महान कार्य के लिए लोकलाज तो छोड़नी पड़ती है। मीरा के आप भजन सुन लीजिए, मीरा की आप जीवन कहानी सुनिए, अपने हर भजन में उसने लोकलाज छोड़ने की बात की है। जैसे एक भजन में मीरा कहती है कि मेरा तो एक राम नाम दूसरा ना कोई, माता छोड़ी पिता छोड़े छोड़ा सगा भाई, और संतों संग बैठ बैठ लोकलाज खोई, संत देख हंसी और जगत देख रोई। अर्थात मैंने संतों के साथ बैठ बैठ करके लोकलाज खो दी, दुशाला छोड़ दिया और ओढ़ लई लोई। अब वो तो महारानी थी लेकिन उसने भोजन भवन भलो नहीं लागे, ना तो वो महल में रही, ना उसने राजाई भोजन किया, लेकिन भगवान के लिए उसने भगवा कपड़े पहने, जेवर उतारा, एक तारा लेके नाची। फिर एक और भजन में मीरा कहती है कि मैं तो सांवरे के संग रांची, साजी सिंगार बांधे पग घुंगरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमती ली साधु की संगति, और भगत रूप भई सांची। तो इसमें भी वो कहती है कि मैंने लोक लाज छोड़ दी और मैं तो सांवरे के संग नाचती हूँ, उसके प्रेम में नाचती हूँ। एक और भजन में मीरा कहती है, शील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घूंघट के पट खोल दिए और लोक लाज दई डार रे, मेरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार रे। इसमें भी वो कहती है कि मैंने सारे पट खोल दिए और लोक लाज को डाल दिया और अब मैं तो श्री कृष्ण पे बलिहार। तो वो तो भक्ति वाली मीरा थी और हमको बाबा ने क्या बोला, आप कौन सी मीरा हो? ज्ञान मीरा हूं। भक्ति वाली मीरा को तो कुछ नहीं मिला, बाबा ने कहा पता नहीं स्वर्ग में आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आप बच्चे तो एक ऐसी सुंदर दुनिया में बाबा आपको ले जा रहा है जिस सुंदर दुनिया की कल्पना भी कोई नहीं कर पाएगा। तो आप तो ज्ञान मीरा हो, सच्ची सच्ची मीराई हो, एक परमात्मा पे बलिहार हो, तो फिर आपको लोकलाज क्यों? जब कोई भी व्यक्ति परोपकार का काम करता है, किसी के कल्याण का काम करता है, किसी को ऊंचा उठाता है, तो लोकलाज छोड़ देता है। मैं अभी एक सप्ताह पहले और कहीं से आ रही थी तो फ्लाइट में मेरे सामने एक विदेशी बहन बैठी हुई थी और इसकी गोदी में एक इंडियन बच्चा था, एकदम काले रंग का और कुरूप, शक्ल सूरत भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी हुई कि इसने इस इंडियन बच्चे को क्यों उठा रखा है। तो जब हम फ्लाइट से बाहर आए और साथ साथ चलने लगे तो मैंने पूछा, बहन जी ये बच्चा कौन है? उसने कहा मैंने इसे अडॉप्ट किया है। तो मैंने पूछा ये अभी स्कूल जाता है? बोली नहीं अभी तो छोटा है। हालांकि वो बच्चा पांव पांव चल सकता था, ढाई तीन साल का तो था, लेकिन उसने बड़े प्यार से उसको गोदी में उठा रखा था। तो मेरे मन में आया कि इसको ये लोकलाज नहीं आई कि तुम इतनी वाइट गोरी सुंदर और ये काला सा बच्चा गोदी में उठा रखा है। हालांकि इसे अपने देश में, उसने बोला मैं स्पेन की हूँ, अपने देश में उसे हो सकता है व्हाइट बच्चा मिल जाता गोद लेती तो, लेकिन उसके मन में ये आया होगा कि मैं एक गरीब देश के गरीब बच्चे को कुछ बना दूं। तो उसने कहा लोकलाज की परवाह की, किसी का भला कर रही है, लोग कुछ भी कहते रहे, और उसके अपनी सारी ऊर्जा लगा रही है। प्लेन में जब वो रोने लगा तो पूरी ऊर्जा लगा दी उसको चुप करने में। मैंने पूछा ये रो क्यों रहा था? तो बोला ये बेल्ट नहीं बंधवाना चाहता था, छोटा बच्चा बेल्ट नहीं बंधवाता। अब उस बच्चे पे उसने सीट भी ली होगी, टिकट भी खर्च की होगी, समय भी लगा रही है। अर्थात अगर व्यक्ति किसी का भला करना चाहता है तो ना जाति देखता, ना कुल देखता, ना रंग देखता, ना धन देखता। हमको भी बाबा कहता है बच्चे कोई किसी भी जाति का हो, कुल का हो, रंग का हो, भाषा का हो, लेकिन आप उसकी सेवा करो। और इसके लिए कभी ये मत सोचो मैं ऊंची जाति का हूँ तो इस छोटी जाति वाले के पास कैसे जाऊं, मैं ऊंचे कुल का हूँ छोटे कुल वाले के पास क्या क्यों जाऊं, क्योंकि ऐसा सोचने वाला कभी किसी का भला नहीं कर सकता। भारत के इतिहास की एक सच्ची घटना सुनाते हैं कुछ सौ साल पहले की, कि दिल्ली में एक सेठ थे जिनका नाम था महेश दास। अमीर बहुत थे, ऊंचे कुल के तो थे ही, लेकिन दयालु बहुत थे। अगर किसी पे संकट आ जाए तो दिल में इतनी दया थी कि कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। तो एक बार उनके घर की जो मेहतरानी थी वो सुबह सुबह काम पे आई तो बड़ी उदास थी। तो सिठानी ने पूछा तुम उदास क्यों हो, उसने बताया कि आपके जो मेहतर है यानी कि मेहतरानी का जो युगल है, बोली उसने कोई गलत काम कुछ ऐसा काम कर दिया तो आज मेहतरों की पंचायत बैठेगी और उसमें उसको जाति भार कर दिया जाएगा। अगर हमको जाति भार कर दिया गया तो हमारे यहाँ विवाह शादी में कौन आएगा, हम किसके यहाँ नहीं जा सकेंगे, हम तो अकेले पड़ जाएंगे, हमारी बेइज्जती भी बहुत होगी। और ऐसे कह के वो बहुत रोने लगी। तो सिठानी ने कहा तुम रो मत, कुछ ना कुछ तो हम प्रबंध करेंगे। तो सिठानी ने महेशदास जी को कहा देखो ये गरीब महिला है, हमारे यहाँ सेवा करती है, इस पे संकट आया है, आपको संकट दूर करना पड़ेगा। तो वो सोच में पड़ गए कि मेहतरों की पंचायत है उसमें मैं कैसे जाऊं, और मेहतरों की पंचायत में उन्होंने तो फैसला ले लिया, उसको मैं कैसे बदलूं, क्या करूं। फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं कुछ तो करूंगा ही करूंगा। तो शाम को 4 बजे उनकी पंचायत थी, तो ये व्यक्ति अपनी बग्घी सजा के और बहुत सुंदर एकदम व्हाइट व्हाइट कपड़े, चूड़ीदार पायजामा और अच्छी सी बहुत सुंदर पगड़ी लगा करके गए। और जैसे ही उनकी बग्घी को देखा तो सारे मेहतर खड़े हो गए, सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए, और कोई कोई ने अपनी आगे की सीट छोड़ दी, सेठ जी यहाँ बैठेंगे। लेकिन सेठ जी बग्घी से उतरे और सीधे जाके उस मेहतर की बाजू में बैठ गए। तो सबने कहा ये क्या कर रही हो, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आप नीचे बैठे हम ऊपर बैठे। बोला नहीं नहीं आज तो मैं यहीं बैठूंगा, उसकी बाजू में बैठ गए। तो जो मेहतर समाज का सरपंच था उसने पूछा सेठ जी कहिए कैसे आना हुआ। तो सेठ जी ने अपनी पगड़ी उतारी और पंच और सरपंचों के सामने ऐसे रख दी। बोला देखो भाई ये जो मेरे घर का मेहतर है, गलती इसकी जो है ना उसको मैं अपने पे ले रहा हूँ, वो गलती इसकी नहीं मेरी, और उसकी माफी के लिए मैं अपनी पगड़ी रख रहा हूँ आपके कदमों में। अब आपकी मर्जी है माफ करो या ना करो। तो सभा में एकदम सन्नाटा छा गया, ये क्या हुआ, कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि फैसला तो उन लोगों ने ले लिया था कि इसको जाति से बाहर करना। तो कुछ देर तो सन्नाटा छाया रहा, उसके बाद पंच और सरपंच ने आपस में बात की और उन्होंने कहा सेठ जी आप अपनी पगड़ी उठा लीजिए, इसका अपराध तो ऐसा है कि माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपकी पगड़ी बीच में आ जाएगी, तो हम इसको माफ करते हैं। तो उसको माफी मिल गई, और माफी मिल गई तो सेठ जी ने अपनी पगड़ी पहनी और फिर वो मेहतर सेठ जी के पांव पकड़ने लगा। तो सेठ जी ने कहा भी मेरे पांव मत पकड़ो, पांव तो इनके पकड़ो जिन्होंने आपको माफ किया है, और इनको कहो कि आज के बाद मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिसके कारण इनको कोई शिकायत का मौका मिले। तो सेठ जी तो खुशी खुशी वापस आ गए और मेहतर ने भी माफी मांग ली कि आगे से मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा। अब आप देखिए वो तो एक व्यक्ति जाति से बाहर था, लेकिन आज समाज में कितने लोग हैं जो दैवी कुल के थे लेकिन दैवी कुल से बाहर निकले पड़े, माया ने उनको दैवी कुल से बेदखल कर दिया, दैवी जाति से बाहर निकाल दिया, क्या बन गए, शूद्र बन गए। तो बाबा कहता है सेठ जी ने एक व्यक्ति को जाति में वापस लाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी की, अपनी पगड़ी उतार के रख दी। तो ये जो दैवी कुल से बाहर चले गए शूद्र कुल में, उनको वापस लाने के लिए आपको भी कितनी बड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी, आपको भी अपनी लोक लाज, अपनी पगड़ी की लाज, अपने बड़प्पन का लाज, अपने कुलीन होने का नाज या अपना धनवान होने का, वो सारे छोड़ने पड़े, और आपको भी इतना नम्रचित बनना पड़े, इतना निरहंकारी बनना पड़े। ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी थे, एक एक बच्चे को ऊंचा उठाने के लिए कितना नम्र बन जाते थे। कितना झुक जाते थे। हमारी नलिनी बहन सुनाती हैं कि बाबा ने मुझे पूछा कि बच्ची तुम शादी करोगी, तो मैंने कहा बाबा मैं किसी विदेशी के साथ शादी करूंगी जो बहुत पैसे वाला हो। तो कुछ दिन तो बाबा के साथ रही और बाबा उसको ज्ञान सुनाते रहे, पर उसको ज्ञान कुछ ज्यादा जमता नहीं था, कोई बाबा के साथ प्यार था। और जब जाने लगी और जब पांडव भवन के बाहर बात तक बाबा छोड़ने आया, तब बाबा ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और बाबा ने जाते जाते धीरे से कहा, बच्ची अगर तू शादी करके चली गई तो ये बूढ़ा बाबा बहुत रोएगा। तो रुमाल से बाबा ने ऐसे एक्टिंग की और ये बात उसके दिल को लग गई कि देखो बाबा को मेरे से कितना प्यार है। और वो दृश्य उसकी आंखों के आगे घूमता ही रहा बॉम्बे गई तब तक। उसके बाद जब बाबा फिर बॉम्बे गया तो बाबा ने फिर उसको बुलाया और बाबा ने कहा कि बच्ची सारी दुनिया इस बाप की दीवानी है, लेकिन ये बाप आपका दीवाना है और ये बाप आपको सारी दुनिया में प्रसिद्ध करना चाहता है। तो बाबा ने कहा बाबा का एक फोटो खिंचवाएगा और वो हरेक सेंटर पे जाएगा। तो बाबा ने उनका वो फोटो बनवाया, तीन वो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। बाबा ने कहा बापू के तो तीन बंदर थे, लेकिन बाबा तो अपनी बच्ची को बिठाएगा। तो कहां अलमाइटी अथॉरिटी और कहां आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा। लेकिन इतने झुक गए एक कन्या के आगे, इतने नम्र हो गए, इतने निरहंकारी, क्योंकि किसी गिरे हुए को उठाने के लिए कितना झुकना पड़ता है, तब तो वो हमारी बाजू में आता है, तब तो वो हमारे हाथों में आता है। अगर हम अकड़ के ही खड़े रहें तो किसी को हम उठा नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा ये लोकलाज छोड़ो, जगत का कल्याण करना है तो लोकलाज की बेड़ियों को तोड़ो। और दूसरा बाबा ने कहा कर्म बंधन, जो कर्मों के बंधन है वो भी बच्चों को बोझिल करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। कर्म बंधन क्या चीज है? दो चीजें होती हैं, एक कर्म बंधन होता है, एक कर्म संबंध होता है। तो जो कर्म एकदम श्रेष्ठ है, ऊंचा कर्म है, वो कर्म संबंध बनता है, वो हमको उड़ा देता है। और जो कर्म किसी भी नेगेटिव भाव भावना से विकार से किया जाता है वो कर्म बंधन बन जाता है और वो हमारे पांव की साकल बन जाती है, बेड़ी बन जाती है, बोझ बन जाता है, हमें उड़ने नहीं देता। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कर्म हमारी रचना है तो संतान भी तो हमारी रचना है ना। अब किसी माता पिता को ऐसा बच्चा पैदा हो गया जो पोलियोग्रस्त है, चल नहीं सकता, उसको उठाना ही पड़ता है, बिठाना ही पड़ता है, अपने हाथों से खा नहीं सकता, उसके मुंह में ही कुछ डालना पड़ता है। और बेशक वो 10 साल का हो गया लेकिन अभी भी वो ऐसे ही लगता है जैसे 1-2 साल का ही है। तो माँ को सुबह से शाम तक उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती। अब मान लीजिए माँ कहती है कि मुझे कहीं सत्संग में जाना है या किसी सामाजिक गैदरिंग में जाना है, तो वो बच्चा इशारा करता है कि मुझे छोड़ के मत जाना, रोता है। बच्चा 10 साल का हो गया, स्कूल जाने का तो बात ही नहीं, अपने आप अपना कुछ नहीं कर सकता। तो ये डिफेक्टिव रचना है जो उस माता पिता को बांध करके बैठ गई है, जब तक जिएगा बांधे रहेगा। अच्छा मान लो किसी का ऐसा बच्चा है जो 6-8 साल का होते ही बड़ा समझदार है, कहता मम्मी आप कहीं भी जाओ चिंता मत करना, मैं अपने आप होमवर्क कर लूंगा, अपने आप खा लूंगा, अपने आप कोई मेहमान आएगा तो अटेंड भी कर लूंगा, फोन भी अटेंड कर लूंगा। तो ये कैसी रचना है? ये बड़ा बुद्धिमान शुरूड बुद्धि बच्चा है जिसने माँ को फ्री कर दिया छोटी आयु में। तो कल की मुरली, संडे की मुरली आपको याद होगी कि ऐसी रचना रचते हैं, किसी को आंख नहीं है, किसी को टांग नहीं है, किसी को बांह नहीं है, और फिर ऐसी रचना की पालना करने में भी बहुत मेहनत लगती है, उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं और उड़ भी नहीं सकते हैं, तो क्या करना पड़े, चलना पड़े, और चलने में मेहनत बहुत लगती है, तो अब ऐसी रचना रचना बंद करो। फिर बाबा ने कहा, कहते हैं हम क्या करें, भगवान की देन है। तो वास्तव में भगवान की देन नहीं है। जब हम किसी भी विकार के वशीभूत होकर के कोई कर्म करते हैं तो वो टेढ़ी बाकी रचना हो जाती है जो हमको बांध लेती है। अब कर्म कैसे टेढ़ा बाका होता है? अब जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अपने ऑफिस में किसी फाइल पे वर्क कर रहा है और वो वर्क बड़ा एकाग्रता वाला है, किसी भी कारण से उस व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं हो रहा है, बुद्धि भटक रही है, ज्ञान में चलने वाला ही है, उसको डिफिकल्ट भी लग रहा है, पर उसको फाइल तो पूरी करनी है, अंदर ही अंदर फाइल के साथ बहुत उलझा हुआ। अब इतनी देर में पियन आता है, सोचता है साहब को बड़ी देर हो गई बैठे, पानी पिला देता हूँ, गर्मी के दिन तो एक गिलास में पानी भर के लाता है, साहब पानी पी लो। अब साहब दुखी तो फाइल से हुआ पड़ा है, लेकिन उसको गुस्सा पियन पे आता है, तू मुझे क्यों डिस्टर्ब करने आ गया, देख मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, तेरे कारण मेरी कंसंट्रेशन भंग हो गई और मेरी फाइल में गलती तेरे कारण हो गई, तू बार बार क्यों आता है, मैंने कब पानी मांगा, मैं अपने आप पी लूंगा ना, जा अपनी जगह जाके बैठ। अब फाइल का गुस्सा किस पे उतरा, पियन पे उतरा। अब बेचारा चपरासी गरीब आदमी भोला आदमी, अब छोटा सा मुंह लेके अपनी जगह जाके बैठ गया, चुपचाप सोचता है मैं तो साहब का भला करने गया था, मैंने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा, पता नहीं साहब क्यों गर्म हो गए। अब ठीक है, दिन भर हमने फाइल पे काम किया और शाम को हम घर आए, अब चाहे हम घर में योग में बैठने की कोशिश करें और चाहे हम सेंटर पे जाके योग में बैठने की कोशिश करें, योग लगेगा क्या? हम चाहे अशरीरी होके उड़ जाएं, हम चाहे परम धाम में जाके बाबा के साथ बैठें, फरिश्ता बन करके सूक्ष्म लोक में बाबा से रूहान करें, होगा क्या ऐसा, हो पाएगा क्या? योग में बैठते ही क्या होगा, योग में बैठते ही क्या होगा, योग में बैठते ही पीएन याद आएगा, योग में बैठते ही ऑफिस का दृश्य सामने आएगा, योग में बैठते ही हमने क्या बोला, उसने क्या किया, वो पिक्चर घूमती रहेगी। और जैसे ही हम चाहेंगे कि हम ऊपर जाएं, वो जो हमारा कर्म है, वो जो हमारी वाणी है, वो फिर से आके कहेगी कि हमें छोड़ के मत जाओ। जैसे वो पोलियो ग्रस्त बच्चा माँ को कहता है, माँ मुझे छोड़ के मत जा, बांध के ही बैठा रहता है, ऐसे हमारा ये कर्म भी पोलियो ग्रस्त है, ये भी कहता नहीं नहीं ऊपर परम धाम नहीं जाओ, सूक्ष्म लोक नहीं जाओ, यही मेरे चारों ओर मंडराते रहो। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि उस कर्म के चारों ओर मंडराती रहेगी और फिर मन ही मन कहेंगे, बाबा आज पता नहीं क्या हुआ, आज मेरा योग नहीं लग रहा, रोज बहुत अच्छा योग लगता है लेकिन आज पता ही नहीं क्या उलझन है, समझ में नहीं आता है, मन एकाग्र नहीं है, दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, बुद्धि भटकती रहेगी, कारण क्या है ये डिफेक्टेड कर्म। बाबा ने कहा किसी को आंख नहीं होती, किसी को बांह नहीं होती, किसी का मुंह नहीं खुलता, ऐसे ऐसे बच्चे पैदा कर लेते और फिर वही बच्चे बांध के बैठ जाते। तो बाबा ने कहा डिफेक्टेड रचना रचना बंद करो। तो जो हमारा कर्म है वो हमारी रचना है, हम उसके रचयिता है। तो हमने ऐसा डिफेक्टेड कर्म किया कि वो ही हमारे पांव की संकल बन गई। याद करना है भगवान को, लेकिन वो कहता नहीं भगवान को याद नहीं करो, मेरे को ही याद करो, और वो फिर आके बुद्धि में बैठ जाता है। कितनी बार रिपीट हो गया ये ऑफिस वाला दृश्य, पीएन आया पानी लाया मैंने डांट मारी, पीएन आया पानी लाया मैंने डांट मारी, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। अगर कोई हमें एक बात दूसरी बार सुनाएगा ना, हम कहेंगे अरे बार बार वही रिपीट कर रही हूँ, लेकिन हमारे मन में तो वही चक्की चल रही है। वही दाना बार बार पिस रहा है, क्योंकि हम परवश हो गए, कर्म हम पे हावी हो गया और हम उसके अधीन। तो अधीन व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता। कल बाबा ने मुरली में बोला कि अपनी मस्तक सिंहासन की सीट पे बैठो और वहां बैठ करके शक्तियों को ऑर्डर दो। अगर शक्तियां समय पर नहीं आती हैं तो इसका कारण क्या है? अगर किसी मालिक का कहना शक्ति या गुण नहीं मानते या समय पर नहीं आते, इसका मतलब मालिक भी समय का पाबंद नहीं। अगर मालिक को समय की कीमत है, मालिक हर काम समय पर करता है, तो उसके जो सेवक है वो भी हर काम समय पे करेंगे, वो भी समय के अनुकूल रहेंगे, पंक्चुअल रहेंगे। तो बाबा ने कहा सहन शक्ति को ऑर्डर दो, सहन शक्ति आओ और मेरा काम करो, समाने की शक्ति को ऑर्डर दो, समाने की शक्ति आओ। लेकिन ये आई नहीं, इसका मतलब मालिक शक्तिशाली नहीं, मालिक की बात का उनपे प्रभाव नहीं। तो क्यों प्रभाव नहीं? बाबा ने कहा स्वस्थिति मजबूत नहीं है। तो कल बाबा ने रिमेडी बताई, मैं निराकार सो साकार आत्मा इंद्रियों से करवा रही हूँ। इस स्मृति में टिक करके जब आप ऑर्डर देंगे तो हर गुण और हर शक्ति आपकी बात मानेगा। मैं मूल रूप में तो निराकार हूँ, लेकिन इंद्रियों का सहारा लेकर के, इंद्रियों को इंस्ट्रूमेंट बना करके निमित्त मात्र ये कर्म कर रही हूँ। मैं करावनहार हूँ और इंद्रियां करनहार है। बाबा ने कहा जब इस भाव में टिकोगे तो सब चीजें आपके अनुकूल होंगी और आपकी जो रचना होगी वो आपकी बहुत परफेक्ट होगी। अच्छा, इसी को हम दूसरे तरीके से लेते हैं कि जब पीएन पानी लेके आया तो हम उसको देख के मुस्कुराए। हमने कहा भाई तुम हमारा बड़ा ख्याल करते हो, हमने प्यार से पानी ले लिया, भले हमको पीना नहीं, और जेब में दो टॉफी पड़ी थी वो भी निकाल के उसको दे दी, तुम हमारी इतनी सेवा करते हो, ये खाना। तो वो कितना खुश होगा, साहब कितनी अच्छी, बहुत प्यार करती है, बहुत मीठा बोलती है। मैं जब भी कोई सेवा करने जाता हूँ ना तो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ दे देती है। अब दूर जाके बैठेगा पर दुआ देता रहेगा, साहब बहुत अच्छी, साहब बहुत अच्छी। तो क्या होगा, जो उलझा हुआ काम था ना फाइल का, उसकी दुआओं से बहुत जल्दी हो जाएगा, कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छी बनेगी और मन में ग्लानी भावना नहीं आएगी। और शाम को जब हम आके योग में बैठेंगे तो ऐसे लगेगा कि वो पीएन अभी भी दुआ दे रहा है, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, और जैसे उसकी दुआएं उड़ा रही हैं। क्योंकि बाबा ने कहा, रिवाइज मुरली में बाबा ने कहा कि आपका मूल संस्कार है दुआ देना और दुआ लेना। तो हम अपने मूल संस्कार में थे, हमने पीएन को दुआ दी, बहुत अच्छा है, टाइम पे पानी, कितना ख्याल करता है। पीएन ने हमको दुआ दी, साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल संस्कार है। अब हम ओरिजिनल संस्कार में टिके हुए थे और शाम को आए योग में बैठे, दुआओं का लेन देन किया था, तो ये दुआएं हमको क्या करेंगी, उड़ा देंगी। हम एक सेकंड में फरिश्ता स्थिति में टिकेंगे, एक सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे, एक सेकंड में विश्व कल्याणकारी स्थिति में टिकेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी जो रचना है वो बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही उत्तम क्वालिटी की है, तो वो मुझे बांधती नहीं है, लेकिन उसने मुझे बंधन मुक्त कर रखा है, तुम कहीं भी जाओ। तो मनुष्य अपने कर्मों से ही बंधता है और कर्मों से ही छूटता है। इसलिए बाबा ने हमको कर्मों का संन्यास नहीं सिखाया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने की विधि सिखाई। कर्म के बिना तो हम रह नहीं सकते, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम हजारों कर्म करते हैं, पलक झपकना भी कर्म है, श्वास लेना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, सुनाना भी कर्म है, चलना भी कर्म है। तो ये मेरे कर्म मुझे बांधेंगे या मुझे उड़ाएंगे, ये मुझे डिसाइड करना है। हर रोज का कर्म, हर कर्म। इसलिए बाबा ने कहा कर्म के साथ धर्म का संतुलन रखो। कर्म तो करो लेकिन ये मत भूलो कि कर्म के साथ धर्म भी होना चाहिए। जैसे देखना एक कर्म, वो तो पशु भी देखता है, दानव भी देखता है, मानव भी देखता है, देवता भी देखता है, देखते तो सब है। लेकिन हम संगम योगी ब्राह्मण किसी को देखते हैं तो पद्मों की कमाई है। क्यों पद्मों की कमाई है? कोई देखता है तो पद्मों का पाप बन जाता है, कोई देखता है तो ना पाप बनता ना पुण्य बनता है, और कोई देखता है तो पद्मों का पुण्य बन जाता है। तो ये अलग अलग क्यों है? हम बाबा के बच्चे देखते हैं, ये आत्मा है, भ्रुकुटी में विराजमान है, ये बाबा का बच्चा है, इसका भी कल्याण हो, इसको भी शक्ति मिले। क्योंकि जब भी हम किसी को आत्मिक भाव से देखते हैं तो हमारी दृष्टि से उसको एनर्जी मिलती है, रूहानी ताकत मिलती है। आत्मिक भाव से आप किसी को भी देखेंगे ऑटोमेटिक उसको सकाश मिलेगा। तो हमारी पद्मों की कमाई जमा हुई, सामने वाले की बैटरी चार्ज हुई, और हमने देखा नॉर्मल भाव से, ना उसमें कोई इच्छा है, देख लिया बस, तो ना पाप ना पुण्य। और अगर हमने किसी को देह दृष्टि से देखा, चमड़ी की दृष्टि से देखा, या और किसी विकार के वशीभूत, स्वार्थ के वशीभूत होके देखा, तो हमारी पद्मों की कमाई चली गई। तो दिन भर में हम कितने कर्म करते हैं? देखना, सुनना, बोलना। तो बाबा ने जैसे कल कहा उसको पक्का करना है, किसी की बाह नहीं होती, किसी का मुख नहीं होता, किसी की आंख नहीं होती, अर्थात ऐसे कर्म जिसमें कोई ना कोई विकार मिक्स है, कहीं क्रोध है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं स्वार्थ है, कहीं दिखावा है। देखा तो सही पर इन भावों से देखा तो कोड़ी तुल्य कर्म हो गया, और देखा लेकिन से देखा, कल्याण की भावना से देखा तो हीरे तुल्य कर्म हो गया। अब हम सुबह से शाम तक कितने हीरे कमाते हैं? 24 घंटे की कमाई है हमारी, तो हमने कितने हीरे कमाए और कितनी कोड़ियां इकट्ठी की, ये हिसाब किताब हम रोज अपना निकाल सकते। तो कर्म के साथ धर्म का संतुलन, अर्थात कर्म करते हुए धारणा ना भूले, धर्म अर्थात दिव्य गुणों की धारणा, सुनना। तो मैंने सुना, सुनती तो पशु प्राणी चिड़िया कबूतर सब, सुनता तो दानव भी है, लेकिन कौन से सुनने में? कोई आके प्रचिंतन सुना रहा है तो कोड़ी तुल्य कर्म हो गया, और कोई ज्ञान की बात सुना रहा है और मैं उसको सुन के धारण कर रहा हूँ, सुनाने वाले का भी पुण्य, मेरा भी पुण्य। लेकिन कोई मुझे गलत बात सुना रहा है और मैंने खुद तो सुनी नहीं बल्कि उसको भी समझाया कि गलत बात को फैलाया नहीं जाता, और उसने छोड़ दिया, तो ये मेरा हीरे तुल्य कर्म हुआ, मैंने किसी की बुरी आदत छुड़ा दी, खुद तो किया ही नहीं लेकिन दूसरे की भी छुड़ा दी। बोलना, बाबा कहते हैं ये मुख गऊ मुख है, ब्रह्मा का मुख गऊ मुख है, मुझसे जन्म लिया हमने, तो गऊ मुख से जन्मे हम, बच्चों का मुख भी गऊ मुख जैसा होना चाहिए। तो इस मुख से अगर ज्ञान रतन निकलते हैं तो ये गऊ मुख है, और अगर इससे कुछ और कुछ निकलता है तो इसको क्या कहेंगे? गंदा नाला। तो उधर क्या हुआ? पद्मों का घाटा हो गया, और अगर ये मुख गऊ मुख है तो पद्मों की कमाई जमा हो गई। तो एवरी मोमेंट हम कितने हीरे इकट्ठे करते हैं ये हमको देखना है। हर घड़ी का खाता है, बाबा के पास है, हर घड़ी हमारा हिसाब जमा होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस ऑटोमेटिक कंप्यूटर में होता रहता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं, उस कंप्यूटर में कोई मिस्टेक भी नहीं होती है। इसलिए एक कदम उठाओ तो मेरी पद्मों की कमाई जमाओ, मैं चल रहा हूँ, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा है, इस सावधानी के साथ मुझे कदम उठाना। बाबा ने कहा ब्राह्मणों का चलना भी कमाई है, देखना भी कमाई है, सुनना भी कमाई है, उठना बैठना हर बात में कमाई है। लेकिन ये कमाई कब बनती है? जब एक एक कर्म धर्म के अनुकूल हो, मर्यादा के अनुकूल हो, श्रीमत के अनुकूल। तो चारों सब्जेक्ट में से जो दो सब्जेक्ट है, एक है राजयोग और दूसरा है धारणा, इनमें जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए एक तो लोकलाज को छोड़ना है, लोकलाज छोड़ के सेवा में लग जाओ, और दूसरा कर्मों को बंधन नहीं बनने देना है। कर्म इस विधि से करने हैं कि वो मुझे उड़ाए। सेकंड में मैं जिस स्थिति में टिकना चाहूं उस स्थिति में टिक जाऊं, उसका अनुभव करूं, लोकलाज और कर्म बंधन। बाबा ने ये दो बातें जीवन से खत्म करने की बात कही। तो चारों सब्जेक्ट का पोता मेल बाबा ने बता दिया। तो अब हमको क्या करना है? होमवर्क क्या मिला, क्या करेंगे, क्या करेंगे? जो दो सब्जेक्ट में कमी है, दृढ़ संकल्प से उसको पूरा करेंगे। ओम शांति।
सतयुग